थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दूसरा इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए, इससे पूर्व कि हम आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि को सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की संगति में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है, इन दिनों हम दूसरे इतिहास की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यहोशापात ने आसा से भी महान धर्म सुधार का काम किया और प्रचार कार्यक्रम को आरंभ किया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उससे कई आशीषें दी और उसके राज्य में शांति व्याप्त हुई। मेरे प्रियो, अब वह एक बड़ा ही विचित्र काम करने जा रहा है। वह है आहाब के साथ यहोशापात की संधि। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और दूसरे इतिहास के पुस्तक 18 अध्याय उसके एक पद से आरंभ करेंगे। कृपया आप निकाल लीजिए दूसरे इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय उसका एक पद। लिखा है, यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के साथ समधियाना किया। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, उसने आहाब के साथ हाथ मिलाया, उसके साथ सहभागिता की। मैं इन दो के जैसे बेमेल मनुष्य कहीं भी नहीं देख पाया हूं। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय के दो पद में पढ़ते हैं, कुछ वर्ष के बाद वह शोमरोन में आहाब के पास गया। तब आहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उसकाया। ध्यान दें, विश्वास नहीं होता। धर्मशास्त्र के वृतांत में वरन कहीं भी ऐसी संधि अति विचित्र घटना है। यह ऐसा है जैसे दिन और रात एक ही समय है, या अंधकार और ज्योति दोनों एक साथ हैं। मित्रों, इन दोनों का संबंध एक भेद की बात है। आत्मिकता में भी उनमें मेल नहीं था। यहोशापात एक अत्यधिक धर्मी राजा था, जो अपने देश में जागृति लाने के लिए परमेश्वर द्वारा काम में लिया गया था। वह परमेश्वर से प्रेम रखता था और परमेश्वर के वचन का प्रेमी था। उसे हम कह सकते हैं कि आत्मिक स्वभाव रखने वाला व्यक्ति या आत्मिक स्वभाव रखता था। दूसरी ओर आहाब एक पूर्ण रूपेण अभक्त मनुष्य था। वह परमेश्वर से घृणा करता था। वह मूर्ति पूजक था और दुराचारी भी था। ये दोनों मित्र कैसे हो सकते थे? ये दोनों एक दूसरे की संगति से प्रसन्न कैसे रह सकते थे? उनमें समानता क्या थी? आइए हम यहाँ कुछ खोज करेंगे। उनकी संधि या सहकारिता तीन प्रकार से थी, जो केवल भौतिक या लौकिक कारणों पर आधारित थी। उनमें आत्मिक के क्षेत्र में कुछ भी समान नहीं था। पहला है, इन दोनों में वैवाहिक संबंध था। यहोशापात के पुत्र यहोराम ने आहाब की पुत्री अतल्याह से विवाह किया। अतल्याह एक खूनी स्त्री थी, जो अपने माता पिता की सी चाल चलती थी। यह सब हम राजाओं के वृतांत में देख चुके हैं। मेरे विचार में इन दोनों का विचार था कि इसराइल और यहूदा को फिर से एक कर दिया जाए। अतः वे संबंधों को साधने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने विवाह द्वारा एकता लाने का प्रयास किया, जो उचित नहीं था। मेरे मित्रों, हमारे आज के समाज में भी यह एक ध्यान देने योग्य बात है। मैं अनेकों के लिए पुराने विचार का प्रचार प्रतीत होता हूँ, परंतु मुझे परमेश्वर के वचन में स्पष्ट व्यक्त इस विषय पर मुंह खोल कर कहना होगा। यद्यपि मैं विवाह और तलाक के विषय पर ज्ञान नहीं रखता, परंतु एक विषय पर तो मैं ऊंचे स्वर में और स्पष्ट कहूंगा, विश्वासी और अविश्वासी को किसी भी परिस्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए, यहोशापात का पुत्र जो आत्मिक जागृति से उभरा था, आहाब और इजाबेल की निष्ठुर पुत्री से विवाह करता है, जो भावी त्रासदी का कारण हुआ। और सच तो यह है कि इसके कारण दाऊद का वंश लगभग समाप्त ही हो गया था। मेरे प्रियो, टूटे हुए परिवार के कारण मैंने देखा कि अन्य किसी भी कारण से अधिक त्रासदी, दुख, दिल का दुखना, जीवन बर्बाद होना, बच्चों का बिगड़ना हुआ है। एक विश्वास का अंगीकार करने वाले विश्वासी और अविश्वासी के मध्य विवाह सफल कभी भी नहीं होगा। दो अविश्वासियों में विवाह पश्चात एक विश्वासी हो जाए तो वह अलग बात है। प्रेरित पौलुस इस विषय में विशेष करके लिखता है, तथापि परमेश्वर के पास एक विश्वासी द्वारा अविश्वासी के विवाह जाल में फंसने के लिए बहुत कुछ कहने को है, और यह एक फंदा है। अब दूसरी बात जो है, हम देखते हैं यहोशापात और आहाब में व्यवहारिक संबंध था। लिखा है कि यहोशापात ने आहाब के पुत्र अजय्याह के राजा हो जाने पर उसके साथ व्यापार किया और तार्शीस जहाज भेजे। देखिए, पहले राजा की पुस्तक 22 अध्याय और दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय में उनका उद्देश्य था अनाज और सोने का व्यापार करना। उनका जहाज टूट गया और माल डूब गया। परमेश्वर इस संधि को आशीष न दे पाया। तब हम तीसरी बात देखते हैं, यहोशापात और आहाब के मध्य सैनिक गठबंधन था। आहाब आराम के साथ समस्याओं का सामना कर रहा था, अतः उसने यहोशापात को उकसाया कि वह उसके साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे। उसने यहोशापात के लिए विशाल भोज का आयोजन किया और असंख्य मेमने और बछड़े काटे। इस प्रकार उसने यहोशापात को उकसाया। देखिए, यहोशापात अब ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठा है। भजन संहिता 1 अध्याय उसके 1 पद में हम देखते हैं, मेरे प्रियो, उत्तरी राज्य की सेना जो यहूदा के विरुद्ध न कर पाई, वह आहाब ने कर दिखाया, उसे आराम के साथ युद्ध में भागी बनाया। मुझे म्यूनिच के चेम्बरलेन और हिटलर तथा मसोलिनी, रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ याल्टा, लंदन के मार्शल का स्मरण आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी गठबंधन हो रहे हैं जिन्हें वास्तव में होना नहीं है और जिन्हें परमेश्वर आशीष नहीं देगा। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, और इसराइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, जैसा तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है, हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। मेरे प्रियो, यहोशापात अपने पुत्र के विवाह के कारण आहाब का समधी है, अतः वह गठबंधन के लिए तैयार है। वह कहता है, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ। अब ध्यान रखें कि परमेश्वर ने यहोशापात को शांति का समय दिया था, परंतु आहाब उसे युद्ध के लिए उकसा रहा था और यहोशापात तैयार हो गया, परंतु उसका मन अशांत था, उसका मन परमेश्वर से लगा था, इस परिस्थिति के कारण वह तनावग्रस्त था। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 18 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, फिर यहोशापात ने इसराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की आज्ञा ले। मेरे प्रियो, यहोशापात ने कहा, हम इस संबंध में पहले यहोवा का वचन मालूम करें। आहाब अपने भविष्यद्वक्ताओं की पूरी सेना खड़ी कर देता है। तब हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, तब इसराइल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहा हूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ में कर देगा। मेरे मित्रों, ये दर्शी कौन थे? बाल के भविष्यद्वक्ता। यहोशापात में विवेक था और वह जान पाए कुछ अनहोनी बात होनी है। तब हम आगे देखते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय उसके 6 और 7 पद में, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का कोई और भी है जिससे हम पूछ लें? इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं सदा हानि ही की नबूवत करता है। वह इमला का पुत्र मिकायाह है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। मेरे मित्रों, यहोशापात ने कहा, क्या तू यह तो नहीं मालूम करना चाहता कि परमेश्वर का वचन सुनाने के कारण तू उससे घृणा करता है? अतः आहाब उसे बुलवाने के लिए तैयार हो गया। मेरे मित्रों, आज भी अनेक जन परमेश्वर का वचन सुनाने वालों से घृणा करते हैं। मैं एक कलीसिया में अपने एक मित्र को जानता हूं जो वर्षों से वहां पर सेवा में है। वहां प्रचारक मंच में एक वाक्य लिखा था जिसे मैं जब जब प्रवचन करता तब तब पढ़ता था। वह था, श्रीमान जी, हम यीशु को देखें। जी हाँ, मुझे यह अच्छा लगता है, परंतु मैं सदैव सोचता था कि धर्मशास्त्र का एक पद प्रचार मंच पर कलीसिया की ओर होना चाहिए। गलातियों के पत्र 4 अध्याय उसके 16 पद, क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? मेरे प्रियो, मिकायाह बाइबल के महापुरुषों में से एक है, जैसा हम पहले राजाओं के पुस्तक 22 अध्याय में देख चुके हैं। वह परमेश्वर का जन था और परमेश्वर का वचन सुनाता था। उसने अपने जीवन को संकट में डालकर आहाब को सच सुनाया। उसे वहां बुलाया गया था। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास के पुस्तक 18 अध्याय के 9 पद में लिखा है, इसराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने नबूवत कर रहे थे। मित्रों, ध्यान दीजिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि 400 भविष्यत वक्ता आहाब के चारों ओर भाग रहे थे और उससे कह रहे हैं, आराम के राजा से युद्ध कर। उनमें से एक तो वास्तव में बड़ा नाटकीय था, सिदकिया लोहे के सिंग लेकर भाग रहा था। सबकी ओर निशाना लगा लगा कर कहता था, तू उन्हें ऐसे मारेगा और नष्ट कर देगा। प्रियो, कैसा दृश्य है ये। दो राजा सिंहासनों पर बैठे हैं और भविष्यद्वक्ता उनके चारों ओर चक्कर काटते हुए कह रहे हैं, जाकर युद्ध कर तो अवश्य ही विजयी होगा। दूसरे इतिहास के पुस्तक 18 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, और जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, सो तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मित्रों, ध्यान दीजिए, संदेशवाहक मिकायाह को परिस्थिति समझाता है और कहता है कि वह अन्य भविष्यद्वक्ताओं के समान ही कहे। वे सब कह रहे थे कि उन्हें युद्ध करना चाहिए, अतः उचित होगा कि मिकायाह भी ऐसा ही कहे। हो सकता है कि वह मित्र बनाने और मनुष्यों का प्रभावित करने की पुस्तक भी एक साथ ले गया था। उसने उसे चिताया कि राजा का अनुग्रह पाने के लिए अच्छी बात करे। मेरे मित्रों, हम इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय के 13 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की सौगंध, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूंगा। मिकायाह भयभीत नहीं हुआ, वह परमेश्वर का वचन ही कहेगा। प्रियो, आप इस विषय में निश्चिंत रहें। दूसरे इतिहास के पुस्तक 18 अध्याय उसके 14 पद में आगे लिखा है, जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो, और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। मिकायाह में मजाक का आनंद लेने की योग्यता थी। मित्रों, मैं इसका आनंद लेता हूं। मैं सदैव कहता हूं और श्रद्धा के साथ कहता हूं कि परमेश्वर भी बाइबल में मजाक का आनंद लेता है। यह इसका एक उदाहरण है। दृश्य की आप कल्पना करें, दो राजा अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हैं और 400 भविष्यद्वक्ता उनके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं और कह रहे हैं, जाओ जाओ युद्ध करो। अब मिकायाह कटाच के साथ उनके मध्य उपस्थित होकर कहता है, जाओ जाओ युद्ध करो। दूसरे इतिहास के पुस्तक 18 अध्याय के 15 पद में लिखा है, राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। प्रियो, ध्यान दीजिए, अहाब कहता है, मजाक मत कर, मुझे मूर्ख मत बना, मैं जानता हूं कि तू इनसे सहमत नहीं है। आहा परमेश्वर का वचन सुनना तो चाहता था, परंतु उसे ग्रहण करना नहीं चाहता था। वह सच और झूठ में अंतर समझता था, परंतु वह सच का पालन करना नहीं चाहता था। मेरे मित्र, आज ऐसे अनेक मनुष्य हैं जो सच को सुनना चाहते हैं, परंतु पालन करना नहीं चाहते। अब मिकायाह गंभीर होकर कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम हारोगे और अहाब मारा जाएगा। दूसरे इतिहास के पुस्तक 18 अध्याय 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, मिकायाह ने कहा, मुझे सारा इसराइल बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबुवत करेगा। मेरे प्रियो, इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैंने तुझसे कहा था कि यह पुरुष मेरे लिए अनर्थ ही की बातें करेगा। अब मिकायाह उसे सुनाता है, वह गंभीर है और उपहासपूर्ण भी है। ओह, कैसे कटाच के साथ वह अहाब को यह दृष्टांत सुनाता है। दूसरे इतिहास के पुस्तक 18 अध्याय 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, मिकायाह ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इसराइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। मित्रों ध्यान दीजिए, यह वास्तव में हास्यपद बात है कि परमेश्वर निदेशक मंडल की सभा बुलाकर पूछ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। मेरे मित्रों, परमेश्वर किसी की राय नहीं लेता है। ओह, यह कैसा तीक्ष्ण कटाक्ष है। नाना प्रकार के सुझाव दिए गए और अंत में एक छोटी सी आत्मा कहती है कि उसके पास एक उपाय है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय 20 और 21 में हम पढ़ते हैं, निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनमें झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। जी हाँ, मीकाया का यह उपास और अपमानजनक दृष्टांत बाल के पुजारियों को झूठे कहने की एक चतुर विधि थी। दूसरे इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय के 22 पद में हम आगे पढ़ते हैं, इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। दूसरे शब्दों में ये दर्शी तुझे सच नहीं सुना रहे हैं, परमेश्वर तुझे दंड देगा। आहाब मीकाया की भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं देता है और उसे बंदी गृह में डलवा देता है। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय उसके 25 और 26 पद में, इस पर इसराइल के राजा ने कहा कि मीकायाह को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार एवास के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गिरी में डालो और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। मेरे मित्रों, वृद्ध मीका के पास अंतिम संदेश है, सुनिए कि क्या कहता है। दूसरा इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय उसके 27 पद में, तब मीकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। मेरे मित्रों, मुझे यह वचन बड़ा अच्छा लगा। जब मीकायाह को ले जाया जा रहा था तब उसने कहा, यदि कभी तू कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। तब उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। वह तो नहीं होगा परंतु तुम अवश्य रहोगे। स्मरण रखना कि मैंने क्या कहा। जी हाँ, यह वास्तव में साहस की बात थी। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास के पुस्तक 18 अध्याय उसके 28 और 29 पद में, तब इसराइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की और इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इसराइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। प्रिय मित्रों, आहाब सर्वथा छल करने वाला निकला। युद्ध में राजसी वस्त्र पहने हुए केवल यहोशापात था जिससे वह अलग से पहचान में आता था। चतुर आहाब ने स्वयं को छल वेश में रखा अर्थात भेष बदल लिया। आप कह सकते हैं कि आहाब ने यहोशापात को युद्ध में मारे जाने का लक्ष्य बना लिया था। वह युद्ध यहोशापात का नहीं था परंतु वह मौत के मुंह में पहुंच ही गया था। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय 30 और 31 पद में हम पढ़ते हैं, आराम के राजा ने तो अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी कि न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इसराइल के राजा से लड़ो। सो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इसराइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा, तब यहोवा ने उसकी सहायता की और परमेश्वर ने उनको उनके पास से फिर जाने की प्रेरणा की। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके युद्ध में जीवित बचने का कारण था कि परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके उसे बचाया। आहाब तो मन ही मन खुश था कि युद्ध में अछूते बच जाने की उसकी युक्ति सफल हुई, परंतु देखिए कि उसके साथ क्या हुआ। दूसरे इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय के 33 पद में हम पढ़ते हैं, तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इसराइल के राजा के झीलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हुआ, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चल। मेरे प्रियो, अरामी सेना के एक सैनिक के तीर समाप्त हो गए। उसके पास एक ही तीर बचा था। उसने आंख बंद करके बिना निशाना साधे वह तीर चला दिया। उस तीर पर आहाब का नाम लिखा था। वह उसे लगा। फिर क्या हुआ? मिकायाह की भविष्यवाणी पूरी हुई, अर्थात वह मारा गया। यहोशापात घर लौटा दुखी, परंतु सबक सीखकर। यहोशापात को गठबंधन के लिए झिड़की भी मिलती है। घर लौटते ही यहोशापात के पास परमेश्वर का वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं दो व्यक्तियों के बारे में। एक व्यक्ति भेष बदल कर अपने जीवन में युद्ध के लिए निकलता है, दूसरा व्यक्ति बिना भेष बदले हुए। हमारे मसीही जीवन में भी कई ऐसे मसीही पाए जाते हैं जो आज भी भेष बदले हुए अपने मसीही जीवन को जी रहे हैं। और याद रखें कि वो तीर उन्हें ढूंढ रही है कि कब उसे घायल करे। मेरे मित्र, इससे पहले कि वो तीर आपको ढूंढ निकाले, आइए आज हम अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता में लाएं, अपने सत्यता को लेकर के आएं। जिस प्रकार से यहोशापात ने पुकारा और परमेश्वर ने उसे बचा लिया, आज वह आपको भी युद्ध के मैदान से, उस संसार की बुराई से बचाने के लिए तैयार है। क्या आज आप उसे पुकारने के लिए तैयार हैं? मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु पर भरोसा रखें, उसके निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यीशु को मैं पहने हूँ, जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है।
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है।
कभी नहीं भूला। भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं।